الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم ان شاء اللہ تعالی دسویں پارے میں ہیں, سورہ توبہ آیت نمبر 53 سے 66 تک کریں گے. آج کی آیات بھی پیچھے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں, جیسے کہ ہم پچھلے درس میں اپنے بات کر رہے تھے کہ منافقین نے غزوہ تبوک میں کس قسم کا مظاہرہ کیا اپنے نفاق کو, جیسے کہ ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا تھا, اور ان کی کیا حرکتیں تھیں, ان کے پول کھول دیے گئے یہاں پہ, اور مسلمانوں کو اس چیز سے وارن کر دیا گیا کہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں, اور یہ بھی کہ مسلمان ایسے کردار اور ایسے طریقوں سے بچ کے رہیں. اب وہ تو جو تھے منافق تھے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ منافق وہ ہوتا ہے جس نے اپنے دل میں کفر کو چھپایا ہوتا ہے. ہمیں بے شک کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں علم کہ کسی کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے, اور وہ جو ظاہر کرتا ہے ہم اسی پہ اعتماد کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں واضح کر دیں قرآن پاک میں, اور حدیث میں بھی ان کی نشانیاں بتا دی گئیں. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جب ان کی نشانیاں ہم پڑھیں تو بجائے اس کے کہ ہم کسی کے بارے میں سوچیں کہ وہ ایسے تھے اور وہ دیکھو یہ کیا کرتے تھے, یا آج کے وقت میں دیکھا دیکھا فلاں بھی تو ایسے ہی ہیں نا, تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں گے کہیں ہمارے کردار ان منافقین کے کردار سے ملتے جلتے تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو ہم بگ ٹربل میں ہیں, بگ ٹربل میں, کیونکہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن ہمیں یہ جا کے پتہ چلے کہ یہ آپ کے ایمان میں تو کھوٹ تھا, اس میں تو منافقت کی کچھ ٹریسز پائے جاتے ہیں, یہ تو وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے, جو خالص ایمان ہو. تو اس دنیا میں وقت ہے کہ انسان اپنے ایمان کو درست کرے. ایک کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان آگے بھی بڑھتے ہوئے زندگی میں وہ سب نہ کرے جو جیسے ایک ایمان والے کا طریقہ ہوتا ہے, جیسے ایک مومن ہوتا ہے, کیونکہ تمام جو وعدے ہیں نا جنت کے اور کامیابی کے وہ مومنوں کے ساتھ ہیں, صرف ان کے ساتھ نہیں ہیں جن کے اندر نفاق بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے لے کے ان آیات کو چلیں گے تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر ہم کہیں کہ بھائی تبوک کے اندر تو ایسے ہوا تھا اور انہوں نے ایسے کیا تھا اور یہ, اور دیکھیں منافق تو ایسے کرتے تھے, تو بس ٹھیک ہے پھر ہم پڑھ کے بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور اس سے آگے کچھ نہیں. لیکن جب میں یہ ان آیات کی تیاری آپ کے لیے کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ ہم کتنے خطرے میں ہیں, کتنی ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی تھیں کہ جو ہمارے اندر موجود ہیں. تو بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کے ذریعے ہمیں ہماری اصلاح کا موقع دیتا ہے. تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے, انفقو خرچ کرو, کیسے, طوعاً خوشی سے, او کرہاً, یہ نہیں کہا جا رہا تم خرچ کرو, یعنی حکم نہیں دیا جا رہا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے کو, اب تم جاؤ گاڑی پہ یا پیدل, مجھے نہیں فرق پڑتا. تو اس کا مطلب نہیں جاؤ کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو چلا جا, ہم یہ کہہ رہے ہیں اب تم جس طرح سے بھی جاؤ گے نا اس سے مجھے نہیں کوئی فرق پڑتا. اسی طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب تم خرچ کر لو, چاہے خوشی سے کرو چاہے نہ خوشی سے کرو, बात यह है कि लन युतकब्बल मिनकुम, असल बात यह है कि हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा तुमसे, यानी अल्लाह ने अब नहीं कबूल करना, क्योंकि ये मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है। वो बाज दफा तो खुशी खुशी खर्च कर देते थे जब आसानी लगती थी उनको, बाज दफा सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कर देते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले सबक में ही जद बिन कैस के बारे में बताया था कि उसने कहा कि मुझे ना साथ लेके जाएं, मैं वहां पे रूमी लड़कियां सुना है कि बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो मैं कहीं फितने में ना पड़ जाऊं। फिर उसने कहा कि ऐसा है कि मैं साथ तो नहीं जा सकता, ठीक है मैं कुछ साथ चंदा वगैरह दे देता हूँ, कुछ डोनेट कर देता हूँ बस, बाकी मैं साथ नहीं जा सकता। देखें, जो चीज सबसे पहली बात यह है कि ना खुशी के साथ, जबरन कराहत के साथ, मजबूरी में आके, किसी प्रेशर में आके इंसान सर से उतारने के लिए करे, वो फिर कबूल नहीं होते। अल्लाह ताला को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। बाज दफा होता है ना कि इंसान कोई नेकी का काम भी इसलिए करता है कि बस ठीक है सर से उतारने के लिए, या अब इतना प्रेशराइज हमें कर रहे हैं कि भाई दो दो, तो फिर अब हम कह रहे हैं कि हाय अब क्या करें, अब जान छुड़ाएं, तो जान छुड़ाने के लिए हम दे देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे सदकात को कबूल नहीं करता। और खुशी से भी ये तो करें, हालांकि खुशी से तो किया हुआ सदका अल्लाह ताला कबूल करता है, मगर इनका वो भी नहीं कबूल हो रहा। उसकी वजह क्या, वो तो आगे देखेंगे, मगर यहां से ही हमें ये पता चलता है कि हर एक सदका, जिसको आप सदका कह के दे देते हैं, जरूरी नहीं कि वो कबूल हो। क्या वजह होती है कि ना, बाज दफा इंसान ऐसा भी होता है ना कि चंदा दे के, डोनेशन दे के, ये सोचता है कि मेरे पास टाइम तो है नहीं, चलो चंदा दे के इनको फारिग करो। अब ये मांगने के लिए आ गए, क्या कहेंगे कि जो है ना इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इतने अमीर हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं निकाला। जैसे बाज लोग साल में एक दफा कोई मिलाद की महफिल रख के उस पर बड़ा खर्चा करते हैं, रेस्टोरेंट में रखेंगे, बहुत बड़े लोगों को बुलाएंगे, और वो सोचते हैं कि बस ये इतना ही काफी है। तो बाज लोग खुशी से, बाज ना खुशी से, जिच हो के वो खर्च करते हैं, लेकिन सारे खर्च कबूल नहीं होते। वजह क्या है, अब ये वजह की तरफ देखें, इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, बेशक तुम तो हो कौम फासिक। ये वजह है कि तुम फासिक कौम हो, और जो फासिक होता है ना उसका सदका भी कबूल नहीं है। फासिक कौन होता है, नाफरमान, गुनाहगार, अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत से बाहर निकला हुआ। इसका मतलब है कि सदका भी, वो भी रिजेक्ट हो जाता है नाफरमानियों की वजह से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में काफरों को भी फासिक कहा है और मुनाफिकों को भी फासिक कहा है। और अब आप कहेंगे इताअत से निकलना या नाफरमान होना, गुनाहगार होना, ये तो सारों का ही हो जाता है, ये तो ऐसे। लेकिन देखें, कुछ हैं जो थोड़े इताअत से बाहर निकले हैं, बिल्कुल सरकश हो जाना, धड़ल्ले से गुनाह करना, कोई छोटा फासिक होता है और कोई बड़ा फासिक होता है। और जो टॉप लेवल है ना फिस्क का, वो है निफाक, वो है कुफर। ठीक है, यानी ये तो फिस्क की इंतहा है, काफिर भी फासिक है। तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल करता, इसलिए कि तुम अपनी जिंदगी को तो देखो, ये तो सारी की सारी अल्लाह रसूल की नाफरमानी में गुजर रही है। अब आके किसी का बच्चा बीमार हो गया तो जल्दी से सदका करने लग पड़े, ये तो बस बच्चा ठीक हो जाए, उनको ये कुछ नहीं कि हमने अल्लाह के रास्ते में देना है, हमने किसी की मदद करनी है। ठीक है, सदकात से बुलाएं डलती हैं, लेकिन वैसे सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है। जहां अपना दिल करता है वहां वो अपनी मर्जी करते हैं, वो ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला को हुक्म किया है। तो जिसने एक भी हुक्म तोड़ा, जिसने ये रवैया रखा कि मुझे नहीं परवाह, मुझे नहीं फर्क पड़ता किसका हुक्म है, मेरे से नहीं ये होता, तो ये फिस्क की अलामत है, ये साइन है फिस्क का। क्योंकि हर हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का, उसकी इताअत जरूरी है, कोई भी फालतू नहीं है हुक्म कि बस ऐसे ही दे दिया और इसलिए दिया कि बस वो पढ़ा रहे कुरान में और हदीसों की किताबों में, और हम अपनी जिंदगियां अपने मुताबिक गुजारेंगे। वो पढ़ने के लिए और रटने के लिए नहीं है, अमल के लिए है ना। तो हम रट तो लें, हम पढ़ तो लें और कुरान खत्म तो कर लें, और उसके बाद नाफरमानियों वाली जिंदगी। तो जहां भी नाफरमानी करेंगे वो फिस्क है। तो जब इंसान एक फासिकीन कुन तुम हो तुम, यानी तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है ये, पूरी जिंदगी तुम इसी तरह करते रहे हो और इसी तरह चल रहे हो एंड यू डोंट केयर, तो फिर ऐसे लोगों के सदकात कबूल नहीं होते। तो ये कानून है जो कुरान से हमें पता चल रहा है कि फासिकों का सदका भी कबूल नहीं है। और हमने पहले पढ़ा था हाबील और काबील की स्टोरी में, कि वहां पे बताया गया था जबकि काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई थी, तो वहां पे क्या बताया गया था कि अल्लाह ताला किन से कबूल करता है? मुत्तकीन से, तकवा वालों से, जो डर डर के अल्लाह से जिंदगी गुजारने वाले हैं, जिनको यह एहसास रहता है कि अल्लाह हमसे किसी बात से नाराज ना हो जाए, कोई क्या काम है मेरे से ऐसा हो ना जाए जिससे अल्लाह ताला की नाराजगी हो जाए। जो पता नहीं हमें अब तकवा का समझ आती है कि नहीं, लेकिन इतना तो समझ आता है ना कि जब हमें किसी से बड़ी मोहब्बत होती, बहुत मोहब्बत, शदीद मोहब्बत होती, तो फिर क्या होता है? वो नहीं, चाहे हमें कोई चीज़ से मना करे या नहीं करे, इससे नहीं फर्क पड़ता। बस फिर हम कहते हैं कि हाय मुझसे नाराज ना हो जाइए, बस मैं इसकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं इसका गुस्सा नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो जरा सा मुंह फेर ले तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता इंसान से। वो कहता कि मेरे से खुश रहे, मैं इसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं, ये जैसा मुझसे चाहता है मैं वैसी बन के दिखाऊं। जब आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है। जो अल्लाह से भी बहुत मोहब्बत करते हैं ना, फिर उनकी नजरें अल्लाह ताला पे ही लगी रहती हैं। फिर उनका यही दिल करता है कि मेरा रब मुझसे बस खुश हो जाए, राजी रहे मुझसे। हाय कहीं मुझसे नाराज तो नहीं होंगे, हाय कहीं ऐसा तो नहीं काम हो गया कि मेरा रब मुझसे मुंह फेर ले। तो इन्नकुम कुन तुम कौमन फासिकीन से ये पता चलता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं। तुम अगर सदके करते हो, खुशी कर से करो ना खुशी से करो, उसको कोई तुम्हारा सदका नहीं चाहिए। तुम क्या सोचते हो कि अल्लाह ताला के दीन को तुम्हारी पैसों की, तुम्हारी चीजों की जरूरत है? अल्लाह ताला रिजेक्ट कर दे तो ऐसे सदके का, ऐसे या ज़कात हैं या सदक़ात हैं या कोई भी और नफली इबादत है या फर्ज इबादत है या नेकी के काम है, अल्लाह ताला जिसने अजर देना है, कबूलियत तो उसके हाथ में है ना। वो ना कबूल करे तो लेके फिरते रहो, कोई फायदा नहीं उसका। तो बहुत इस चीज़ को समझ के रखें कि जैसे इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात है ना, कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं, इसी तरह बाज गुनाह भी ऐसे होते हैं जो नेकियों को चाट जाते हैं, चाट जाते हैं नेकियों को। और ये देख ले, फिस्क व फुजूर, नाफरमानी का ट्रैक होना, ये बगैर इताअत वाली जिंदगी गुजारना, इससे सदके भी नहीं कबूल होते हैं। वमा मनाहुम, और नहीं रोका उनको, अन के तो कबैला मिनहुम, कबूल किए जाएं उनसे, नफ़ाकातुहुम उनके माल, इल्ला मगर किस चीज़ ने रोका है उनके मालों को कबूल होने से, किस चीज़ ने रोका है, क्या वजह है? नंबर वन, अन्नहुम कफ़रू बिल्ला, इसलिए कि वो कुफर करते हैं अल्लाह का। उन्होंने कुफर किया, लेकिन वो तो कलमा पढ़ रहे थे। कहाँ उन्होंने कुफर किया था? उन्हें कलमा तो पढ़ा हुआ था ना, वह भी रसूली और उसके रसूल के साथ भी कुफर करते हैं। हालांकि अब्दुल्ला बिन उबई, तो उसका यह हाल था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में खुतबे के लिए खड़े होते, तो वो आपसे पहले खड़ा होकर लोगों में ऐलान करना शुरू हो जाता, लोगों ये अल्लाह के रसूल हैं, लोगों इनकी बात मानो, लोग बस सिर्फ दिखावे के लिए ना। जब दिल में ही कोई चीज छुपाई भी है तो अल्लाह ताला तो दिलों को जानता है ना। ऊपर से चाहे जुबान से कहते भी रहे कलमा, अगर जिंदगियां कुफर वाली हैं, अगर जिंदगियों में अमल वो है ही नहीं जो ईमान लाने वाले का होना चाहिए, तो इंसान तो फिर ईमान का दावा करे या अपने आप को मुसलमान कहे या मुसलमानों वाले नाम रख ले, डजंट मैटर। कहा गया है इन्होंने कुफर किया अल्लाह के साथ, हालांकि जुबान से कुफर नहीं किया कभी भी, रसूल का भी जुबान से नहीं कुफर किया कभी। उन्होंने खड़े होकर ये नहीं कहा हम आपको नहीं रसूल मानते, हाँ काफिर ऐसा करते थे लेकिन मुनाफिक तो ऐसा नहीं करते थे। इसका मतलब अल्लाह ताला को इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जुबानों से क्या कहते हो, तुम जुबानों से कितने बड़े बड़े दावे ईमान के करते हो, तुमने अपने नाम क्या रखे हुए, तुम कहलवाते क्या हो, तुम सोसाइटी में पहचाने किस चीज से जाते हो। ये वो पहचाने क्या जाते थे, मुसलमान ही पहचाने जाते थे, उनको कोई ये थोड़ी कहता था ये वो मुनाफिक जा रहा है, ऐसे नहीं कहता था, वो सब मुसलमान ही कहलाते थे, वो मुसलमानों की एक सोसाइटी थी। मगर अल्लाह ताला क्या फरमाता है, उनके अंदर कुफर है, उन्होंने कुफर किया अल्लाह का भी और उसके रसूल का। जब भी इंसान इस दीन के साथ सिंसियर नहीं होगा ना, याद रखे अल्लाह ताला के साथ वफादार नहीं है, उसके रसूल के साथ वफादार नहीं है, खैरख्वाह नहीं है इस दीन का, उसने इस दीन को अपनाया नहीं है, इस दीन के साथ उसका बस एक वो वाला ताल्लुक है कि बस फायदा मिलता जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हम तो ये दीन वाले हैं ही नहीं, बस नाम का बराए नाम, चलो कुछ तो नाम रखना ही था ना, तो चलो एक मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों के घर तो पैदा होगा, इससे कोई मुसलमान नहीं हो जाता अगर दिल में कुफर है तो। ये बहुत डरा देने वाली बातें हैं, क्योंकि हम अपने आप को बस जब मुसलमानों के घरों में पैदा हो गए तो हमने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि हम बस मुसलमान ही हैं, चाहे हमारे दिल में कुछ भी है, ईमान है भी कि नहीं है, तो इनके अंदर ही कुफर है। और कुफर के साथ तो कोई सदका, कोई खैरात, कोई नेकी कबूल नहीं है। ये है कबूलियत में रुकावट की वजूहात, रीजंस वाय। कोई कह सकता है क्यों नहीं कबूल, उन्होंने तो बड़ी खुशी से दिया था, क्यों नहीं कबूल, चाहे ये कह रहे हैं हम अल्लाह की खातिर दे रहे हैं, मुंह से थोड़ी वो कह रहे थे कि हम किसी और के लिए दे रहे हैं या हम आपसे डर के दे रहे हैं या क्या, मगर अल्लाह ताला नियतों को जानता है, अल्लाह ताला ये भी जानता है किसका अकीदा क्या है, कौन किस वजह से दे रहा है, इसलिए इनके ये सदकात भी इनको कयामत के दिन बचा नहीं सकेंगे, कोई इनके लिए शेर नहीं बन जाएंगे। वला यातून सलाता इल्ला वहुम कुसाला, और नहीं वो आते नमाज को मगर इस हाल में कि वो सुस्त होते हैं, बददिली के साथ, दिल ही नहीं करता नमाज पढ़ने का। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज की तरफ भागते थे, जब कोई मसला होता नमाज के लिए खड़े हो जाते, नमाज जन्नत की कुंजी है, यानी जन्नत की है, चाबी है, इससे जन्नत खुलनी है, नमाज ही नहीं है तो क्या है। वो तो खड़े हुए भी जाते थे क्योंकि वो एक्चुअली उस सोसाइटी में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई मुसलमान हो और नमाज ना पढ़े, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मतलब ऐसे सोच ही नहीं सकता था कोई कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि कोई मुसलमान हो और बेनमाजी हो। ये तो आज है ना कि हम बेनमाजी भी होते हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं, और फिर अगर कोई कुछ कह दे तो हम कहते हैं अपनी फिक्र करो, तुम्हें क्या पता कि हम अंदर से क्या है, हमारा अंदर, तुम्हें क्या पता कि हम कितने पक्के सच्चे मुसलमान। तो ये आज की चीजें हैं, वरना उस वक्त के अंदर क्योंकि उसको काफिर समझा जाता था जो बेनमाजी, नमाज के बगैर तो ईमान ही नहीं समझा जाता था, तो अब इनको पढ़नी पड़ती थी, अब क्या करते, फिर तो नमाज के लिए आते थे, मस्जिद में भी आते थे, लेकिन अब अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह, अल्लाह तो देखता है ना तुम्हारे दिलों को, अल्लाह ताला तो देखता है कि तुम्हारे अंदर क्या है। अब इसी चीज को लोगों ने बहाना बना दिया, अल्लाह ने तो दिल देखने हैं, यानी अब नमाज भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने दिल भी देखने हैं, अमल भी देखने, क्योंकि ईमान जो है ना वो तस्दीक है, तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से तस्दीक करना, वेरीफाई करना, इकरारुम बिल लिसान, जुबान से इकरार भी करना जरूरी है, और अमल बिल जवारे, अमल जवारे से करना भी, यानी ये बॉडी पार्ट्स के साथ अमल करना भी जरूरी है, तब ईमान बनता है। ये तीन चीजें मिलेंगी तो ईमान बनेगा। आज के लोगों ने समझ लिया मत दिल ही मेरा इतना अच्छा है तो अब अमल की क्या जरूरत है, अल्लाह ने तो दिलों को देखना है। उधर के लोगों ने समझा, वो तो उन्होंने मुसलमानों को दिखावा करना था, तो उन्होंने सोचा कि हम काम कर लेते हैं ये सारे और दिल चाहे हमारे काफिर ही रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है, लोग तो बाहर देख रहे हैं ना, इनको तो दिखा दे। उनको इतनी मुसीबत क्या थी ये, कभी आपने सोचा? असल में जो राइजिंग पावर होती है ना, जैसे जिसको कहते हैं चढ़ते सूरज को सलाम, हमारे उर्दू में ये मुहावरा बोला जाता है ना, कि यानी जो भी चढ़ रहा हो ऊपर जा रहा हो, लोग खाम खा ही उसके साथ मिल जाते हैं। लोग कहते हैं चलो इसके साथ मिलेंगे ना, इसके साथ एसोसिएट हो जाओ, हम भी ऊपर चले जाएंगे। तो उनका भी ये हाल था जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को तो कामयाबियां मिल रही हैं और अब मदीना छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, जिस जगह वो रहते थे वहां पे किसका होल्ड था, वहां पे तो मुसलमानों का ही था। उनको क्या बाहर अरब में कितना भी कुफर है या रोम या फारस, वो तो मुसलमान नहीं थे उस वक्त, लेकिन जिस जगह वो रहते थे वहां की जरूरत क्या थी कि इस वक्त बस मुसलमान हो जाओ, चाहे नाम के ही हो जाओ, लेकिन बस हो जाओ, वरना तो आप यहाँ पे सरवाइव कैसे कर, मतलब आप सरवाइव तो कर ही सकते थे, यहूदी भी तो रहते थे, लेकिन उनको ये था कि फायदे फिर नहीं मिलेंगे, फिर हम उन चीजों से दूर रह जाएंगे जो जैसे इनको मिल रही हैं। तो वो नमाज पढ़ने को आते थे मगर कुसाला, गफलत है, बेबदिली है, दिल नहीं कर रहा। और कुसाला का मैंने आपको बताया किसल से है, अरबी में ना किसल कहते हैं, जब रुई धुनकी जाती है ना और जब उसका तांत टूट जाता है तो वो किसल कहलाता है, यानी धागा जब उसका टूट जाता है ना वो किसल है। तो मतलब क्या हुआ, कुसाला का क्या मतलब हुआ, फिर पीछे जाके देखें तो यानी नमाज में कनेक्शन टूटा हुआ है, बजाहिर उठक बैठक हो रही है, रुकू सजदे हो रहे हैं, नमाज के लिए खड़े भी हो रहे हैं, मगर नमाज तो असल में अल्लाह ताला से कनेक्शन का नाम है, अगर कनेक्शन ही नहीं जुड़ा तो फिर तो नमाज ही नहीं। तकबीरे तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक मुसलसल देखने में तो नमाज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कनेक्शन एक जगह भी नहीं लगा, राबता ही नहीं जुड़ा। अल्लाहु अकबर, कितनी सारी हमारी भी तो नमाजें ऐसी होती हैं जहां पे कनेक्शन ही नहीं जुड़ता, नमाज पढ़ भी ली, नमाज खत्म भी हो गई, किन ख्यालों में पढ़ी, किन ख्वाबों में पढ़ी, किन बातों को याद करते हुए पढ़ी, सलाम फेर लेते हैं तो पता चलता है अच्छा नमाज पूरी हो गई। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। एक आदमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, नमाज पढ़ के आया आपके पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ वापस, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो हैरान हो गया, हैं मैंने तो अभी पढ़ के आया हूँ, आप कह रहे नमाज नहीं पढ़ी, फिर गया पढ़ के आया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया जाओ वापस, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर मतलब कन्फ्यूज हो गया कि क्या बात है, मैं तो अभी पढ़ के ही आया हूँ, तीसरी दफा फिर गया, फिर पढ़ी उसने, वापस आया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। अब उसने कहा कि मैं तो पढ़ रहा हूँ, अब आप मुझे बता दें मैं क्या गलती ऐसी कर रहा हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि किस तरह आपने ठहर ठहर के पढ़नी है, कैसे हर रुकन के ऊपर आपने सकूत सुकून की पोजीशन में जाना, अगर रुकू में सुकून आ जाए, सारी हड्डियां एक जगह ठहर जाए, यानी सारी बॉडी उस पोस्चर में आके कुछ देर के लिए वहां पे वक्फ हो जाए, स्टेशनरी हो जाए वहां पे, ऐसे नहीं है कि अभी एक जगह पे गए नहीं तो दूसरी शुरू पोजीशन आ गई, दूसरी में खड़े नहीं हुए तो तीसरी पोजीशन शुरू हो गई, मुसलसल एक हरकत है, ऐसे नहीं, नमाज पढ़ी जा रही हो तो पता चले एक पुरसकून इंसान पढ़ रहा, ये नहीं कि ऐसे जैसे हमारे पीछे कोई भागा हुआ या हमने कोई रेस लगाई हुई है। वला युन्फिकुना इल्ला वहुम कारिहून, और वो खर्च नहीं करते मगर नापसंद करते हैं, यानी सदके को ऐसे करते हैं कि जैसे मजबूरी है, क्या मुसीबत है हमें देना पड़ गया, क्या मसला है ये हर वक्त मांगते ही रहते हैं, क्या मुसीबत है, यानी जैसे कि अपने ऊपर कोई बहुत बड़े मसले की बात नहीं, जब हम शॉपिंग करते तो हम मुसीबत समझ के नहीं करते, कभी आप शॉपिंग पे जब जाते हैं तो आप अपने लिए कोई चीज़ पसंद की उठाते हैं तो आप ये नहीं सोचते हाय ये मुसीबत अब मुझे ये लेनी पड़ गई है, कभी नहीं ऐसे हम सोचते, खुशी खुशी लेते हैं। हालांकि हमसे पैसा गया होता है, घर लेकर आते हैं खुशी खुशी सबको दिखाते हैं, ये देखो मैं क्या लेकर आया, ये देखो मुझे फलां चीज़ मिल गई है, अपनी पसंद की चीज़ हो तो किस तरह ऐसे होता है। हालांकि क्या आपने उस पर पैसे नहीं स्पेंड किए, किए हैं, आपके पैसे गए हैं ना, फिर भी खुशी है क्योंकि वो चीज़ जो पसंद है वो मिल गई। लेकिन यहाँ पर पैसे गए हैं लेकिन ये दिल में एहसास नहीं कि अल्लाह ताला की रज़ा मिल गई होगी मुझे, मैंने अल्लाह को खुश कर दिया, मैंने अल्लाह के बंदे को खुश करके इसके काम आके अल्लाह को राज़ी कर दिया, मेरा अल्लाह खुश हुआ होगा इस पे, मेरा दिल खुश हो जाए, मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया, ये मेरी आखिरत में मेरे लिए साया बन जाएगा, जिसे कोई साया नहीं होगा, सदका मेरा साया बन जाएगा, ये अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करने वाली चीज है, मैंने अल्लाह के गजब को ठंडा किया, इन चीजों का एहसास ही नहीं, तो अब लगता क्या है, ये तावान है हमारे ऊपर, चट्टी पड़ गई हमें, देना पड़ गया हमें, क्योंकि यहाँ पे हम वो चीज को महबूब नहीं रखते जो इसके बदले में हमें मिल रही है। और मॉल में जब हम जाते हैं, बाजार में हम जाते हैं, हमें वो चीज महबूब है जो इस माल को देने से हमें मिल गई, हालांकि वो क्या घटिया चीजें होती, कोई कपड़ा होगा, कोई पर्स होगा, कोई जूता होगा जो अगले दिन खराब होके 4 दिन बाद आप उसको ही फेंक रहे होंगे, लेकिन जब उसको लिया था तो कितने खुश थे, खर्च करके भी खुश थे। और यहाँ पे खर्च करते हैं तो दिल में तंगी है, खर्च करते हैं तो मजबूरी समझ के करते हैं, क्योंकि जो मिल रहा है वो पसंद नहीं है ना, उसकी चाहत ही नहीं है, अगर उसकी चाहत होती तो किसी कीमत पे भी उसको लेने के लिए तैयार होते। अल्लाह अकबर। इसी तरह सुस्ती भी जो है ना, ये जो नमाज में सुस्ती है, एक तो जिस्मानी सुस्ती है कि उठने को ही नहीं दिल कर रहा, आए बस इधर बैठ रहे हैं उधर बैठ, एक जहनी सुस्ती है कि बहुत समझना उसको क्या है, इतनी जल्दी जल्दी नमाजें, अभी तो एक पढ़ गया तो दूसरी का भी टाइम आ गया, अल्लाह तू हमें माफ करते हैं। फला तो अजीब का अम्वालुहुम वला औलादुहुम, इनकी जो माल और औलाद है ना ये तुम्हें पसंद ना आए, क्यों? वो जब वो आप देखते हैं किसी को उसके पास बड़ा माल है और उसकी औलाद, उस वक्त तो कसरत औलाद को देख के बड़ा लोगों को बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था, जिसकी औलाद ज़्यादा होती थी वो इसके ऊपर बड़ा फख्र करता था, मेरे इतने बेटे हैं, वो बाजू समझता था उनको ना। और आज क्या है, आज ज़्यादा औलाद पे तो नहीं है, लेकिन आज क्या है कि मेरी औलाद बहुत बड़े बड़े ओहदों पे है, लायक कितनी है मेरी औलाद, कितनी कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ चुकी है और कहाँ तक पहुँच गई है, तो आज इसके ऊपर फख्र है। तो फिर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास माल बड़ा होता है, औलाद बड़ी लायक है, तो अब इंसान कहता है कि वाह भाई ये तो कितने कामयाब है, उनको देख के मरऊब होता है, इम्प्रेस होता है उनसे, और बड़ी हसरतों से देखता है, कहता है वाह क्या बात है इसकी। अल्लाह ताला ने फरमाया जो ईमान वाले हैं ना उनको ये चीज़ें इम्प्रेस नहीं करनी चाहिए जब ये किसी फासिक के पास है, अल्लाह के नाफरमान के पास है, ऐसे मुनाफिक इसलिए नहीं मैं कह सकती कि हमें तो नहीं पता, हम कहेंगे वो मुनाफिक है ना, देखो उसके पास कितना माल और औलाद है, तो अल्लाह ताला ने कहा उसके माल औलाद को देख के ना खुश हो, नहीं, लेकिन फासिक जो है, अल्लाह का नाफरमान जो है, इसके माल और औलाद की कितनी भी कसरत उसके पास हो, कितना ही अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, कितने उसके बच्चे आपको लग रहे हैं कि जबरदस्त उन्होंने पढ़ाइयाँ कर ली, जबरदस्त यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन अगर वो फासिक फाजिर है, अगर वो दीन के साथ सिंसियर नहीं है, अगर उसके अंदर दीन नहीं है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इससे मुतासिर ना होना, तुम्हें ये अच्छी नहीं लगनी चाहिए, तुम इनको देख देख के हसरते ना, और ऐसे बिल्कुल जैसे इंसान इम्प्रेस होके बड़ा दूसरे की तरफ देख के ऐसे हो जाता है कि हाय देखो कि इनको ये मिल गई, हाय हमारे पास तो नहीं, पर ये आहें भरता है, ठंडी सांस लेता है दूसरे के माल औलाद देख के। हालांकि क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नामा, इन्नामा मैंने आपको क्या बताया, इन्नामा का माना कि सिर्फ क्यों है उनके पास ये माल और औलाद अल्लाह ने दिया हुआ, कि युरीदुल्लाहु लियुअद्दिबहुम बिहा फिल हयात दुनिया, अल्लाह ताला ताकि उनको अजाब दे इनके जरिए इस दुनिया की जिंदगी में। आप देख लें अब्दुल्ला बिन उबई, उसका बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला ही था, वो पक्के सच्चे मोमिन थे, तो बेटा भी इसका हिमायती नहीं था, बेटा भी इसका अपना नहीं था, बेटा भी दूसरी तरफ था। और जो दौलत है वो तो फिर यहीं रह जाती है, अल्लाह ताला इनको इन्हीं के जरिए अजाब देता है। यानी ये लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास इतना माल दौलत और इन्हीं में पड़े रहते हैं, और उसके बाद जाते वक्त दुनिया से, या तो इस दुनिया के अंदर ही वो अजाब बन जाते हैं, माल भी और औलाद भी, और या फिर दुनिया से जाते वक्त ऐसे लोगों को जिन्होंने इसी में वक्त काटा है ना, इतनी हसरत होती है उनको, क्योंकि जाहिर है ना औलाद को इस काम का बनाया कि वो सदका जारिया बनते, उनको भी दुनिया में ही लगाए रखा, ना माल को कोई अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तो ये अजाब का बायस, अजाब कैसे बायस बन गया कि इंसान उन्हीं के अंदर अल्लाह मशगूल इतना कर देता है ना कि वो हिदायत की तरफ आते ही नहीं, ये अजाब है उनके लिए। हालांकि वैसे ये नेमतें हैं, माल भी नेमत है अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को अल्लाह ताला ने माल दिया और उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो नेमत है, औलाद भी नेमत है, इसलिए कि वो इंसान के लिए दुनिया में भी सुख का सबब बने और उसके बाद भी सदका जारिया बने तो उसके लिए नेमत है। लेकिन अगर ये ऑपोजिट हो जाए तो क्या अजाब नहीं है? कितने ही लोग इस अजाब को झेलते हैं इस दुनिया में और रोते हैं इन्हीं औलादों की वजह से। देखिए माल और औलाद की सिर्फ क्यों बात आई, कभी आपने सोचा कि क्यों माल और औलाद को फितना भी कहा गया कि ये आजमाइश है, क्यों इनको दुश्मन भी कहा गया, क्यों इनको ऐसी चीजें कही गई? क्योंकि माल और औलाद यही दो चीजें ऐसी हैं को जो इंसान को अपने अंदर इतना बिजी कर लेती हैं, इतना मशगूल कर लेती हैं कि उसको याद भी नहीं रहता कि मेरा मकसद हयात क्या है, मैं जिंदगी में दुनिया में क्यों आया, इतना इन्वॉल्व कर लेती हैं, वो अल्लाह से दूर ही होता चला जाता है, इनके अंदर इतना फंस जाता है, ये फिर अल्लाह ताला का एक तरह से अजाब बन जाती है, क्योंकि इंसान उनके अंदर इतना बिजी है कि जब उसको होश आता है तो तब जाने का वक्त होता है, तब आखिरी सांसें होती हैं, तब उसको होता है हाय माल भी तो यहीं रह गया, वो तो बैंक में पड़ा हुआ है, उसका मैंने क्या किया, वो तो यहीं रह गया, और मेरी औलाद वो भी मेरी ना बनी, मैं क्या लेके जा रहा हूं फिर। सोचे ऐसे इंसान की फिर हसरत क्या होती है, क्या ये उसके लिए अजाब नहीं बन गए? और फिर ये माल जो वो छोड़ के जाता है उसकी औलाद उसको उड़ाती है, गलत जगहों पे खर्च करती है, और यही माल इसमें से सदका नहीं दिया, इसमें से जकात नहीं निकाली, तो वो अजाब बन जाएगा क्यामत के दिन। तो ये माल और औलाद असल में ऐसी चीजें हैं दो कि जो इंसान को सोचने ही नहीं देती, जब इंसान इनके अंदर एक दफा बिजी हो जाए ना तो फिर वो उसको होश आने का वक्त ही नहीं मिलता, एक दफा इंसान इन्हीं के साथ अपने आप को अगर जोड़ दे तो उसका दीन ईमान सब लुट जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर मशगूल कर लेती है ना। माल में भी आप देखें, आप एक जॉब करें फिर दूसरी भी कर लें, फिर बिजनेस भी खोला हुआ तो एक बिजनेस है फिर दूसरा भी शुरू कर लिया फिर तीसरा शुरू कर लिया, इंसान को ये चैन लेने ही नहीं देता, इंसान कहता नहीं अब इतना हो गया, अब इससे ज्यादा होना चाहिए, इतना हो गया अब इससे ज्यादा। इसी तरह औलाद, औलाद के काम, उनकी फिक्रें, उनकी भाग दौड़, उनके इतने इतने, फिर जब तक छोटे होते हैं तो डिफरेंट तरह के उनके काम है, जब बड़े हो जाते हैं उनके डिफरेंट तरह के फिक्रात हैं, फिर उनके बच्चों की फिक्रात हैं, फिर उनके बड़ों के फिक्रात हैं, यानी इंसान की सारी सारी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है अगर वो अपने आप को सीधा ना रखे। अगर वो बहना चाहे तो ये दो चीजें उसको इतनी दूर ले जाती हैं कि उसको होश नहीं आने देती। इसी वजह से आप देखें कि जब आप इसको आजमा के देखिएगा, आप जब किसी से पूछते हैं ना कि आप आए कुरान पाक की तरफ हम, तो चलो कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह लबैक कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का रीज़न क्या होता है? ये दो रीज़न ही होते हैं उनके, एक या तो हमारी जॉब है या कोई बिजनेस या कोई ऐसी कोई चीज़, कोई कमाई का कोई बात कहेंगे, या फिर कहेंगे कि बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, बच्चों की शादी है, बच्चों का ये है, बच्चों के बच्चों का है, फलाने का, बस ये दो चीज़ें हैं। देखिए ना, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा दें कि क्या चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर लेती है, वो ये दो चीज़ें। अब जब ईमान ही ना हो या ईमान में कमजोरी हो ना, तो फिर बस इंसान इन्हीं में लगा रहता। हाँ, जिसका ईमान मजबूत है वो माल कमाता भी है, लेकिन वो माल में अपने आप को ऐसे नहीं इन्वॉल्व कर लेता। अब देखिए, हजरत उस्मान भी तो मालदार थे, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ भी तो मालदार थे। मालदार होना कोई बुरा नहीं है, माल का होना कोई गुनाह नहीं है, मगर क्या उन्होंने अपने आप को मालों में इस तरह से मशगूल कर लिया जैसे आज के दौर के अंदर लोग हैं, कि ना नमाज का हिम्मत रहे, ना वक्त मिले, ना कोई और दीन के काम की कोई फुर्सत हो। उधर दीन को जरूरत है, उधर कह रहे हैं एक जॉब से अब उन्होंने टाइमिंग अब थोड़े कम कर दिए हैं, या अभी एक जॉब के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, सोचता हूँ दूसरी कर लूँ, या वीकेंड पे तो फारिग ही होता हूँ, सोचता हूँ एक और नौकरी क्यों ना शुरू कर दी जाए, या साइड बिजनेस क्यों ना शुरू कर दिया। साइड बिजनेस करने का सोच लेते हैं, साइड पे दीन को नहीं सोचते कि इसके साइड बाय साइड दीन क्यों ना शुरू कर दिया जाए, उसकी खिदमत क्यों ना की जाए। तो मटेरियलिस्टिक जब दिमाग हो जाते हैं ना, दीन के साथ वो अटैचमेंट नहीं है जैसी होनी चाहिए, ईमान महबूब नहीं होता ना। जब जब ईमान में कमजोरी होती है ना, तब ये हाल होते हैं, फिर बस माल ही माल नजर आता है कि इसको किस तरह डबल और ट्रिपल किया जाए। फिर औलाद के मसले ही बड़े हो के नजर आते हैं कि इनके सुख चैन के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम क्या क्या कुर्बान करें। तब ये फिर दुनिया में भी मुसीबत बन जाते हैं, ये अजाब बन जाते हैं। देखें, इंसान ने दुनिया से जब जाना है तो कौन सी चीजें उसके लिए सदका जारिया बनती हैं, ये बताइए। एक तो उसका माल जो उसने अल्लाह के रास्ते में दिया, उसकी औलाद जो उसके पीछे से उसके लिए दुआएं करती है, या इल्म जो वो सिखा गया। ठीक है, अब ये जो दो पहली चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये दोनों ही अपनी आखरत के लिए ना इनको तैयार किया, तो क्या साथ लेके जाएंगे? बुक तो बंद हो जाएगी, पीछे से क्या सदका जारिया बनेगा? ना औलाद है इस काबिल कि उनको कोई दुआ आती हो अपने वालदैन के लिए, मगफिरत के लिए, ना वो कभी अपने वालदैन को कभी याद रखें कि उनके लिए कोई सदका खैराती कर लें, ना कभी उनके लिए कोई ऐसा नेकी का काम करके उनके पीछे भेजें, ना खुद कुछ नेकी ऐसी कर रहे हैं कि खुद अपने भी काम आ जाए और वालदैन के लिए भी सदका जारिया बन जाए। तो फिर उनको ये ऐसी तरबियत ही नहीं दी कभी, उनको भी दुनिया में ही लगाए रखा कि बेटा तुमने बड़ा आदमी बनना है, तुमने ये डॉक्टर बनना है, ये इंजीनियर बनना है, ये साइंटिस्ट बनना है, तो उसको भी बस यही कहते रहे। फिर वो वालदैन का भी ना बना, जो अल्लाह का नहीं बनता वो किसी का भी नहीं बनता। इसी तरह माल है, माल में से भी कुछ ऐसा नहीं है सदका खैरात किया हुआ कि वो ही पीछे से काम आता रहे, तो क्या होगा उनके लिए? तो अल्लाह ताला उनको दुनिया की जिंदगी में भी इनके जरिए अजाब देता है। वतजहा का अनफुसुहुम, और निकलेंगी उनकी जानें सख्ती के साथ, इस हाल में कि वो काफिर हैं। फिर जब जाहिर है इसी के अंदर लगे रहेंगे, तो उनको कभी ईमान की तरफ ध्यान आता ही नहीं। जाने तक निकलने का वक्त आ जाता है, मौत का वक्त आ जाता है, और वो काफिर ही होते हैं दिल से। सब कुछ खत्म हो गया ना फिर तो, क्योंकि जब मौत आ गई तो सब, एवरीथिंग इज गॉन नाउ, अपने हाथ से चला गया। अब तो क्या किस चीज की वजह से गवा दिया ये सब, ये माल और औलाद? और तुम सोचते हो कि हाय कितना इनको मिल गया, अल्लाह ने तो इसलिए ज्यादा दे दिया कि इसी में लगे रहो, अब लगे रहो लगे रहो, यही तुम्हारे लिए अजाब बन जाए इस दुनिया में भी, और तुम्हारी जानें भी निकलें इस हाल में कि तुम इसी मुनाफकत पे ही रहो। क्योंकि मुनाफिक ना अच्छे खासे मालदार थे, इसलिए उनको क्या परवाह थी। उन्होंने तो बस चाहे झूठ है चाहे धोखा है चाहे किसी तरह भी माल खसूटना, वो दीन के लिए उन्होंने कौन सा कुछ लगाना होता था। ये जो बाकी लोग आपको पता है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े ताजिर थे मक्का में और अच्छे मालदार थे, लेकिन फिर क्या हालत हो गई थी। अब ये तबुक में सारे घर का सामान लेकर आ गए तो क्या रह गया होगा उनके पास घर में। तो जब आप अल्लाह के दीन के लिए लगाते हैं और वो तो इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे रहे थे, तो उसके बाद उनके अपने हालात तो वैसे नहीं रह गए थे ना, लेकिन मुनाफिकों ने थोड़ी कुछ देना होता था। लिहाजा उनके लिए तो यही था कि यही सब कुछ है। और ये देखें कि मदीना में जो मुनाफिक थे ना वो ज्यादातर एजड लोग थे, उम्र रसीदा थे। जवानी में अमूमन इंसान जो है ना इन चीजों से बेपरवाह होता है, उसको इतनी नहीं परवाह होती थी, अरे बच्चे अभी ऐसे नहीं होते इस एज के, या अभी शादी नहीं हुई होती और माल में भी अभी इतना ज्यादा नहीं होता। नहीं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है ना वो बहुत मसलहत पसंद हो जाता है, उतना ही ज्यादा जमा करने लगता है, उतना ही ज्यादा उसको इन चीजों की फिक्रात रहती। तो उनके अंदर मुनाफ़त थी। कभी इंसान कहता है नहीं इसके अंदर समझदारी ये है कि इस तरह से जमा किया जाए, समझदारी इसके अंदर है कि अपना सब कुछ ना लगा दो। तो इन मुनाफिकीन का ये था कि इनकी एजेस बड़ी थी लेकिन इनके बच्चे जो थे ना अब वो यानी जवान हो रहे थे और वो उनका ईमान पक्का था। जैसे मैंने अब्दुल्ला बिन उबई की मिसाल आपको दी, वो यहलिफून बिल्लाही इन्नकुम लमिनकुम, वो कसमें खा खा के कहते हैं कि हम तुम में से हैं। क्यों, उनको इतनी क्या मुश्किल थी कि वो कसमें खा खा के कहें। अभी मैंने आपको जैसे वजह बताई ना, मुनाफिक जो है वो जो मफाद का बंदा होता है, जहां से फायदा है बस उनके साथ है, जहां से कुछ मिलना है बस वहां पे है, जहां पे कुछ नहीं मिलना तो उनके साथ उसका कोई कोई उनके साथ उसका नहीं रहा। अब ये आके कसमें क्यों खाते कि ये हमें मुसलमान समझते रहे, ये ना हो कि ये समझे कि ये तो मुनाफिक हैं या ये ऐसे हैं, तो ये हमें मुसलमान समझते रहे, तो इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यकीन दिलाने की आखिरी हद क्या है कि कसमें खा खा के कहें अल्लाह की कसम है हमने तो तुम्हारे साथ जाना था लेकिन ये हो गया, ताकि तुम हमें ये ना समझना कि हम मुनाफिक हैं, लेकिन हैं मुनाफिक। अल्लाह अकबर, कहाँ तक ये जो दुनिया का मफाद है ना, ये दुनिया का लालच, ये दुनिया की मोहब्बत, ये कहाँ तक इंसान को ले जाती है, किस हद तक उसको गिरा देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम मिनकुम, हालांकि वो तुम में से नहीं है, चाहे ये कसमें क्यों ना खा ले। अब बाहर देखने में कोई कसमें खाता नजर आ रहा है, कोई खर्च भी कर रहा है और कह रहा है नहीं मेरी मजबूरी है बहुत, तो दूसरा कहेगा हाँ पता नहीं वाकई ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला को बातों के साथ राजी नहीं किया जा सकता जब तक कि इंसान के दिल में इखलास ना हो। असल में ना इंसान दिल की तरफ तो कम ही तवज्जो करता है, बस ये देखता है कि लोगों ने मान ली ना मेरी बात तो पता नहीं ऐसा ही है। अगर आप मेरे बहाने को कबूल कर लें कि मैं आपको कहूँ कि नहीं देखे ना मेरी मजबूरी है मैं नहीं आ सकती मैं, और आपने कबूल कर लिया तो मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है भाई मेरा बहाना चल गया। देखो हालांकि मुझे क्या सोचना चाहिए कि मेरा अल्लाह तो जानता है ना, मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं नहीं आ सकती वो नेकी का काम है, मैं नहीं क्लास ज्वाइन कर सकती क्योंकि मेरी ये मजबूरियां। अब आपको क्या पता, अब आपने सोचा कि हम भी ठीक ही कह रहे हैं कि कसम खा के कह दे तो और भी यकीन कर लेंगे, लेकिन जिसका ईमान हो उसको तो ये सोचना चाहिए ना कि इसने यकीन कर भी लिया तो मेरा अल्लाह तो जानता है ना, मैंने इसके यकीन को क्या करना है, मैंने इसके यकीन का मुझे क्या फायदा, सिर्फ इसलिए कि मेरी इसके सामने बनी रहे, मेरी इज्जत बनी रहे इसके सामने। इसी इज्जतें बनाने के चक्कर में हम कितने लोगों को बहाने कर करके उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को ऐसे हम नहीं सेटिस्फाई कर सकते क्योंकि वो हमारे दिलों को जानता है, हम उसको ऐसे राजी नहीं कर सकते, वो हमारे ये झूठे बहाने नहीं ले सकता, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है। तो हम किसको सोचते हैं कि हमने बेवकूफ बना लिया लोगों को, और इस तरह से हम अल्लाह ताला को भी पता नहीं अपनी बातों से बस बातें कर करके खुश कर देंगे कि हम तो दीन की खातिर ये करने को तैयार हैं, हम तो वो करने को तैयार हैं, हम तो हमारी जाने भी मांगे तो हमारी हाजिर है। अभी देखना आप रबीउल अव्वल आएगा तो वो ऐसे जमीन आसमान के कलाबे मिलाएंगे, ऐसी शायरी कि जैसे पता नहीं आज तो दुनिया खत्म हो जाए, हम खत्म हो जाए, हम मर मिटे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन उसके बाद जिंदगी में देखो एक सुन्नत पे अमल नहीं, एक बात उनकी पूरी नहीं करनी, उनके हुक्मों को धड़ल्ले से तोड़ना, ये क्या चीजें हैं? तो किसको ये बातें हम सुनाते हैं, किसको राजी करना चाहते हैं, लोगों में वाह वाह कराना चाहते हैं कि लोग सुन लें, वो मान लें, वो हमें एक्सेप्ट कर लें, वो समझ जाएं कि हमारी कितनी मजबूरी है, वो मजबूरी है या नहीं अल्लाह को तो पता है ना। लेकिन हर जगह हम इस तरह से कर करके लोगों को खुश करते रहते हैं, इन द एंड होना क्या है, इन लोगों को भी हम याद नहीं रहेंगे कि हम कौन थे, क्या थे, हमारे क्या मजबूरियां और बहाने थे, उनको क्या, वो अपनी राह लेंगे, कल को तो हमें अपनी कब्र में खुद जाना है ना। इन मुनाफिकीन का यही तो प्रॉब्लम था, उनको ये लगता था हमने इनको सेटिस्फाई कर दिया ना, बस ठीक है, दैट्स इनफ, वो खुद खुद खुश हो जाते थे कि चलो देखो हमने इनको कह दिया, कसमें खा खा के कह दिया, आप तो मान ही गए होंगे ना हमारी बात। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नहीं वो कहते हैं वो तुम में से ही है, तुम्हारे साथ है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन वो तुम में से नहीं। वलाकिन्नहुम कौमुन यफरहून, बल्कि वो तो एक कौम है जो डरते हैं अंदर से, असल में ना दिल उनके डर रहे हैं कि ये ना हो कि ये हमें कोई नुकसान इनके हाथों से पहुंच जाए, ये ना हो कि ये हमें समझे कि ये मुनाफिक है, तो अगर इनको पता चल गया तो क्या होगा, और डर का हाल क्या है, अब इनके डर की हालत बताइए कि अंदर से कितने डरे हैं। लव यजिदूना मलजअन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लव इलैही, अगर ये पाए कोई जायपना, कोई गार, कोई दाखिल होने की जगह, भाग जाएंगे उसकी तरफ। वहम यजमाउन, और मैंने आपको बताया कि यजमाउन क्या है, रस्सियां तोड़ा के भागना, घोड़े का मुंह जोर भागना, सरपट दौड़ना, तो ये दौड़ते हुए चले जाएंगे, इतने ही अंदर से डरे हैं कि अब हम करें तो करें क्या। असल में मुनाफिक क्योंकि किसी तरफ कभी नहीं ना होता, एक इंसान एक तरफ हो जाए ना तो फिर वो बेखौफ हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता, बस ठीक है अब जान जाए तो जाए, बस यही जाएगी, हमारा जीना मरना एक के साथ ही है। लेकिन जो दो कश्तियों के सवार हो जाते हैं ना, वैसे भी हम मुहावरों में बहुत बोलते हैं दुनियावी तौर पे भी, कि जो दो कश्तियों का सवार है वो डूब जाता है, ये दो कश्तियों के सवार थे ना, इधर के थे ना उधर के थे, जाए तो जाए किधर, इनके साथ भी करना क्योंकि ये जाहिर है यहाँ पे मफाद है, यहाँ पे फायदे हैं, मदीना के अंदर इनकी हुकूमत है, हुकूमत के साथ लगना, देखिए ना आप अपने मुल्कों में भी देख लें, हुकूमत के साथ जो लग जाता है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं ना, हुकूमत मुखालिफ को क्या मिलेगा। तो अब हुकूमत तो मदीना में मुसलमानों की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाकिम थे, हुक्मरान थे वहां पे, अब इनके साथ कौन दुश्मनी ले, इनके साथ दुश्मनी ले ली तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा फिर। अब आप देखें हमारे आ, आ, मुल्कों के अंदर वो कहते हैं जो हुकूमत आती है उसके साथ कुछ लोग उनके बन के बैठ जाते हैं, दूसरी हुकूमत आती है उनके साथ बैठे होते हैं, तीसरी आती है उनके साथ बैठे होते हैं, हर एक के साथ वो नजर आते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, वो किसी के साथ वफादार नहीं होते, वो मफाद के बंदे होते हैं, उनको पता है अब जो हुकूमत में है इसके साथ लगेंगे तो फायदा मिलेगा, यही मुनाफिक की हालात है, उनको पता था ये पनप रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं, और जब मक्का फतह हो गया तब तो उनको बिल्कुल ही मुसीबत पड़ गई, अब तो क्या, अब तो यही आ गए, और इनके साथ होने में मसला क्या था, यहाँ तो इनके साथ ही हो जाते, मसला क्या था, यहाँ पे तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, यहाँ पे तो आए दिन कभी जंगे हो रही हैं, कभी कह रहे हैं सदका व खैरात करो, कभी कह रहे हैं अल्लाह ताला की खातिर ये करो वो करो, तो कुर्बानी कुर्बानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मसले में ही पड़ गए। अगर ये भी होता ना इसी तरह कि कुछ परवाह नहीं है, मर्जियां अपनी करो, कोई हराम हलाल नहीं, बस जो मर्जी करते रहो, ये वो दीन होता जिसमें ना कुछ कुर्बान करना पड़ता, कुछ देना ना पड़ता, फायदा ही फायदा होता, ना कोई भाग दौड़ करनी पड़ती, कोई स्ट्रगल नहीं थी, ना कोई लड़ना, ना कोई कुछ कुछ भी नहीं करना था, खुद ही बस जैसे हमने आज दिन को बनाया बना, इस तरह से होता ना वहां पे, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। सोचा हमने फिर क्या मसला था, फिर हो जाते इनके साथ ही, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ये दीन मांगता है आपसे सैक्रिफाइस, ये दीन आपसे मांगता है कि अपना सब कुछ लगाओ, ये दीन आपसे मांगता है कि आप वफादारी दिखाओ, अपनी दिल से भी वफादार हो और अपने अमल से भी वफादारी दिखाओ अल्लाह रसूल के लिए। दीन ये तकाजा करता है कि मुसीबतों के पहाड़ भी टूट जाएं, तब भी टस से मस नहीं होना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हारा ईमान ऐसे होना चाहिए जैसे पहाड़ है अपनी जगह से हिलते नहीं है चाहे आंधी तूफान आए। अब ऐसे कहाँ ईमान थे, ऐसे कहाँ ईमान थे। ये तो हमारे ऊपर तो कोई आजमाइशें अल्लाह का शुक्र आई नहीं, तो हमारे भी भरम रखे हुए अल्लाह ने, हमारे भी पर्दे रखे हुए अल्लाह ने, यकीन करें। वरना जरा सी बात होती है, हमें तो ज्यादा कुछ ऐसा ऐसे टेस्ट है ही नहीं, लेकिन जरा सी बात होती है ना, एक तरफ इस्लाम है दीन है, दूसरी तरफ हमारा कहीं नुकसान हो रहा है तो कम कहते हैं इस्लाम जाए इधर, हम अपने देखो अब इतना हम नुकसान तो नहीं उठा सकते ना, या कहीं फायदा नजर आ रहा है, कहीं फायदा नजर आ रहा है और वहां पे इस्लाम है तो फौरन उसके साथ जुड़ जाते हैं, कहीं फायदा दूसरी तरफ नजर आ रहा है और एक तरफ इस्लाम है तो फौरन इस्लाम को छोड़ के उधर चले जाते हैं। आप देखिए छोटी सी एक मिसाल है, छोटी सी एक मिसाल है, इस इन मुल्कों के अंदर यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे 9/11 जब हुआ तो बेशुमार लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं तुझे इस्लाम के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं, इस्लाम के साथ तुम्हारा ये नहीं, कोई हमें देख के पहचान ही ना लेके हम मुसलमान हैं, वो भाई चेंज करो अपने नाम, वो भाई चेंज करो अपने हाल। ये तो बहुत छोटी एक मैं आपको मिसाल बता रही, बहुत छोटी, हालांकि क्या आपको पकड़ नहीं रहे थे किसी को, कोई में मार रहा था, कितने दुनिया के अंदर ऐसे मार दिए गए लोग जो इस पे के मुसलमान हों और वो 9/11 के बाद उनको मार दिया गया जानों से, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इक्का दुक्का कहीं वाकयात हुए कोई हुए होंगे, वो तो वैसे ही इंसान को किसी को हादसा हो गया तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन उस वक्त भी पता चल गया था कि कितने कच्चे धागे से बने हुए हैं अपने दीन के साथ, और अल्लाह ना करे कोई बड़ी आजमाइश आ जाए तो फिर देखें, फिर कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई दीन हमें इतना प्यारा है दीन नहीं छोड़ेंगे, जान जाए तो जाए, ईमान नहीं जाएगा, कितने लोग हैं जो कहेंगे हाँ नुकसान होता है तो होता रहे, मैं तो नहीं ये दीन छोड़ सकती, ईमान तो मुझे इतना प्यारा है। हम तो छोटी छोटी बातों पे दीन को छोड़ देते हैं, हम तो कहीं जॉब मिल जाए तो तब तोड़ फाड़ के बैठ जाते हैं, ना नमाज हो रही है, ना कोई कुरान हो रहा है, ना कोई हिजाब, तो सब उतारना पड़ रहा है, सब कुछ अले, लेकिन नौकरी जो मिल गई नहीं जी, वहां पे तो जगह भी नहीं नमाज पढ़ने की, नहीं जी वो तो अलाउ भी नहीं करते नमाज, तो नमाज के बगैर तो कोई मुसलमान ही नहीं, अब किधर गया हमारा ईमान। तो ये तो मैं छोटा टेस्ट आपको बता रही हूँ, बहुत छोटा है ये, बहुत छोटा, इसमें कोई हमारे गन पॉइंट पे नहीं हमें कोई लेके खड़ा हुआ कि आप कोई जरूरी ये नौकरी करनी है, ये तो हम अपनी चॉइस से कर रहे होते हैं, लेकिन तब हमें कोई दीन प्यारा नहीं लगता, तब हमें दीन को छोड़ना और दीन के हुक्मों को तोड़ना कोई मसला नहीं लगता, मफाद मिल रहा है ना, नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है तो नौकरी के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना, जरा सा हुकूमत की तरफ से कहीं से आ जाए कि हाँ जी अब मुसलमानों के लिए ये नहीं है फैसिलिटी, वो काम नहीं कर सकेंगे, वो ऐसे नहीं कर रहे, या मुसलमान औरतें फॉर एग्जाम्पल अगर आ जाता है, मुसलमान औरतें हिजाब लेती हैं जो, वो उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनको देखना सारे अगले दिन उतार के फेंक देंगे, तो मैं देखो तुम्हें जॉब भी तो करनी है, या और कोई चीज आ जाए ऐसी तो तब पता चल जाता है ना, हमारे ऊपर टेस्ट नहीं आए हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि नहीं आए हैं। आप देखें कि आज चाइना के अंदर कितने मिलियन मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद किया हुआ, कितना बड़ा इम्तिहान है उनके लिए, आज की इसी सदी में जिसमें हम सोचते हैं कि नहीं आज तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आज की इस दौर में भी जो हम बड़ा तरक्की याफ्ता और बड़ा मॉडर्न दौर समझते हैं, इसमें भी आज ऐसा हो रहा है, वो इम्तिहान में आज, बहुत बड़े इम्तिहान में, हमारे पास तो कोई ऐसे इम्तिहान आए ही नहीं, अब छोटी छोटी इस चीजों से अल्लाह ताला आजमाता है ना, कहीं नौकरी है, कहीं बच्चे का एडमिशन है, कहीं और कोई और फायदा मिल रहा है, उसके ऊपर ही हम फिसल जाते हैं। बड़े इम्तिहान तो बड़े लोगों पे आते हैं ना, हम इतने के काबिल हैं, इतने में भी नहीं हम जम पाते हैं। तो इन लोगों का हाल क्या था, भाग रहे, इनकी बस नहीं चलता था, डर अपने अंदर इतना था, अब क्या करें, ना इनके साथ रहने में चैन, ना दूसरी तरफ जाने में चैन, दूसरी तरफ जाते हैं तो क्या करें, यहां से हिजरत कर जाएं क्या? मदीना उनका घर था, मदीना में उनकी जमीनें जायदाद, अपनी घर बार, अपने सब, कौन अपना मुल्क छोड़ के जाता? अगर भाग सकते होते तो उन्होंने कहीं भाग जाना था, अगर इनको कोई पनाह की जगह नहीं मिल रही थी। इंसान बाज दफा दीन से भागता है, लेकिन वो समझता है कि वो भाग जाएगा अल्लाह से, अल्लाह से भाग सकते हैं कभी? कहाँ भाग के जाओगे, कोई पनाह की जगह नहीं मिलेगी। व मिनहुम मन यल्जिम यल्मिजुका, और इनमें से ऐसे हैं जो आपको इल्जाम देते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर सदकात सदकात के बारे में। एक इसके पीछे वाकया आता है कि एक आदमी था बद्दू, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांट रहे थे सोना चांदी, कोई माले गनीमत था, तो देख के कहने लगा कि अल्लाह ने तुझे अदल का हुक्म दिया है तो तू अदल नहीं करता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तबाह हो जा, अगर मैं नहीं अदल करता तो इस जमीन पे और कौन अदल करे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे और इस जैसों से बचो, मेरी उम्मत में इन जैसे लोग होंगे, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ही होंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताना कर रहा है कि आप अदल करें, आपने इंसाफ ही नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरी उम्मत में से होंगे, ये कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक से इनके नीचे नहीं उतरेगा, ऐसे होंगे। इसी तरह जंगे हुनैन के माले गनीमत की तकसीम के बाद दूसरा वाक्य आता है, जुल कुवैसरा एक आदमी था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज किया और कहा था तू अदल नहीं करता, इंसाफ से काम ले। आपने फरमाया अगर मैं अदल ना करूं तो फिर तेरी बर्बादी कहीं नहीं जा सकती। जब वो चला गया तो आपने फरमाया इसकी नस्ल से एक कौम निकलेगी जिनकी नमाजों के मुकाबले में तुम्हें अपनी नमाजें हकीर मालूंगी, यानी इसका मतलब वो इतनी अच्छी नमाजें पढ़ते होंगे तुम्हें लगेगा कि हमारी नमाजें कितनी हकीर है। और इन सहाबा से फरमाया और इनके रोजों के मुकाबले में तुम में से हर एक को अपने रोजे हकीर मालूम होंगे। और कुरान का तो आपको बता दिया ना कि कुरान ये पढ़ेंगे लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी हलक से नहीं मतलब हजम नहीं होगा, यानी दे वोंट एब्जॉर्ब इट, पढ़ तो रहे होंगे लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के रखे में, पढ़ पढ़ के रखे में, और क्या है उसके ऊपर अमल, या क्या है उसकी उसको समझना, या उसका जिंदगी पे असर, कोई असर नजर ही नहीं आता, हलक से नीचे नहीं उतरेगा, पढ़ेंगे वो भी। तो फरमाया वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से, तीर कमान से निकल जाता है ना, इस तरह वो दीन से निकल गए होंगे। तुम्हें जहां भी मिल जाए उनके कत्ल में कमी ना करो, आसमान तले इन मकतूलों से बदतर मकतूल कोई और नहीं होगा। और फिर आए थे ऐसे लोग जिनका कुरान पढ़ना, जिनकी नमाजें इतनी जबरदस्त थी, और वो खवारिज थे, हजरत अली ने उनके साथ जंग भी की थी। तो ये खवारिज ऐसे थे कि वो लोगों को कहते थे अगर तुम में से कोई भी गुनाह हो गया तो तुम काफिर हो गए, कबीरा गुनाह को कुफर कहते थे। अब इसके साथ लड़ना भी जायज हो गया, अब एक तो काफिर हो ही गया, अब इसको कत्ल करना जायज हो गया, तो इस तरह कह के लोगों को काफिर करार दे देते थे और खुद को कहते थे कि हमारी जैसे नमाजें, और उनको अपने नमाजें रोजे और इसके ऊपर बड़ा फख्र था, मुसलमानों को ही कत्ल करते थे। तो यानी हाँ ऐसे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए हैं कि मेरी उम्मत में आएंगे, ऐसे लोग होंगे इतने नेक पारसा, लेकिन कुरान कुछ कह रहा है, उनकी जिंदगियां कुछ और हैं, और पढ़ पढ़ के कुरान के ढेर लगाए हैं, नमाजों के पक्के हैं, नमाजें अदा हो रही हैं ऐसे कि देखें तो कोई क्या क्या सफ़ें बनी हुई हैं, और क्या खुशू व खुजू नजर आ रहा है, और क्या जबरदस्त नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या दीन है ही नहीं। इसका पता चलता है कि नमाज रोजा कर लेना सिर्फ दीन नहीं होता, ये तो बेसिक्स हैं, बेसिक्स, दीन की इमारत तो इनके ऊपर खड़ी होगी, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते ये दीन से ऐसे निकल गए जैसे तीर को मान से, वरना तो नमाज रोजा ही काफी होता। अच्छा फिर इनका हाल क्या, फिर इन तू मिनहा रोदू, अगर आप अगर वो दिए जाएं इसमें से राजी हो जाएं, यानी असल में इनकी ब्लैकमेलिंग थी ना कि जब हम कहेंगे आप तो इंसाफ नहीं करते तो डर के मारे ये हमें दे देंगे, तो अगर तो इनको दे दिया जाए ना तो बड़े खुश होते। वा इल्लम यु अतो मिनहा फाइजा हम यस खातून, और अगर ना दिए जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। अब बाज लोगों को आपने देखा ना वो कैसे इस तरह के मतलब ही होते हैं, उनका ताल्लुक भी बस मफाद का ही होता है कि जब आप जितनी देर उनके मुंह भरते रहो वो आपके साथ खड़े हैं। पॉलिटिशियंस में भी ऐसे होते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिशियंस की जो सिफात है ना वो मुनाफिकीन से मिलती जुलती भी है, तो कि भाई जब तक उनको दिया जा रहा है तो वो बड़े खुश रहते हैं साथ लगे में, जब नहीं दिए जाते तो वो मुखालफत में खड़े हो जाते हैं, कहते हमने अपनी पार्टी बना लिया। तो इसी तरह खानदानों में भी लोग होते हैं, इसी तरह हर जगह होते हैं ऐसे लोग कि जो जब तक आप उनको तोहफे तहाइफ दे रहे हैं, जब तक उनकी हाँ में हाँ मिला के उनको ऊपर कर रहे हैं, उनको आगे आगे कर रहे हैं और उनको कुछ नवाजते जा रहे हैं, तो वो बहुत आपके सपोर्टर भी हैं और आपसे बड़े खुश हैं। जिस दिन आप उनको कुछ भी नहीं देते तो फिर उनके मुंह बनने शुरू हो जाते हैं, फिर उनको ये होता है कि अच्छा ये तो बहुत बुरा, फिर वो आपके अंदर कीड़े निकालने लगते हैं। तो ऐसे लोग किस चीज के बंदे होते हैं, किसी के साथ इसका मतलब वफादार थोड़े ही है, वो तो मफाद के बंदे, मफाद है ना उनका, जब तक मफाद होगा उस वक्त तक साथ है, जब मफाद खत्म हो गया तो वो कहते हैं सलाम अलैकुम हम जा रहे हैं। तो ये भी मुनाफिकीन की ये खसलत पता चली, एक तो कि वो राजी होते हैं जब तक उनके मुंह भरे रहें और नाराज हो जाते हैं जिस वक्त के कुछ ना दिया जाए, यानी उनको सिर्फ लेने में इंटरेस्ट है, उनको अपने साथ रखना है ना तो बस उनको देते रहो, लेकिन ऐसे लोगों का क्या फायदा, ऐसे लोगों को कभी कोई वफादार समझता है अपना, इतना लालच है, इतना नफ्स के अंदर लालच है कि बस दूसरे का भी साथ ये नहीं देख के देना कि कोई हक पे है या ना हक है या क्या है, बस इसलिए कि लालच है। मुनाफिकिन का मसला ही ये था ना, एक तरफ लालच है दूसरी तरफ कुर्बानी है, कुर्बानी कौन दे भाई, फैसला नहीं कर पाए वो किधर को जाना है हमने, एक तरफ दुनिया के मफाद मिलता है, एक तरफ ये है मसला कि देना पड़ता है कुछ, क्या करें मफाद अजीज है, देखिए इंसान को ये लालच, ये दुनिया की मोहब्बत, ये माल की मोहब्बत, ये दुनिया के फायदे कहाँ तक लेके चले जाते हैं, सोचें अपनी जिंदगियों में भी आप देखें कहाँ कहाँ हम दीन को कुर्बान कर देते हैं दुनिया के फायदे के लिए, चाहे कोई जॉब है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे किसी के साथ कोई रिश्ता नाता करना है, चाहे कोई भी चीज, सिर्फ जॉब बिजनेस आप कहेंगे उन्हीं की बातें करें, कोई भी चीज में आप देख लें, आप जब वहां से कोई फायदा आपको मिल रहा होता है, वहां पे आपका कोई काम बनना है, दूसरी तरफ दीन है, तो आप किसको प्रेफर करते हैं, इस तरफ को जहां पे फायदा बन रहा है, मतलब बच्चे की शादी होनी है मसलन है कि किसी के साथ रिश्ता नाता करना है मसलन है, कोई चीज किसी से हासिल करनी है, कोई आपकी सिफारिश कर देगा, इसके कॉन्टेक्ट बहुत बड़े हैं, कोई आपके लिए आगे जाके आपके लिए कोई फायदे की चीज कर सकता है, तो अब क्या आप अपना दीन कुर्बान कर देते हैं उसके साथ लगने के लिए, या कहते हैं कि नहीं आई डोंट केयर, मेरा दीन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। तो इन चीजों में हम अपने आप को ऐसे जब टेस्ट आते हैं ना छोटे छोटे हमारे सामने, वहां पे खुद को रख के देख लिया कर, सोचें देखो मुनाफिकीन ऐसे किया करते थे, अगर मैंने भी ये किया तो मेरे अंदर और एक मुनाफिक के किरदार में क्या फर्क रहेगा, मैंने ये नहीं करना, अगर मैं मुंह से ईमान का दावा करती हूँ तो मुझे पक्का रहना है इसके ऊपर, मुझे इसको सच करके दिखाना है कि जो मैंने कलमा पढ़ा हुआ है मैं उसके साथ सच्ची हूं, मैं उसके साथ वफादार हूं, मुझे वफादारी दिखानी है। देखिए एक औरत अपने शौहर की एक दिन वफादार रहे, अगले दिन वो किसी और के साथ हो, वहां पे फायदा मिल रहा है किसी तीसरे के साथ चली जाए, तो उस ऐसी औरत को आप क्या कहेंगे, उसका शौहर उसको रखेगा क्या? हाँ बताएं, उसका शौहर उसको रखेगा बीवी के तौर पे, कहेगा जॉब फारिग हो तू? अल्लाह ताला तो बड़ा गयूर है, बड़ा गैरत वाला है, उसके दीन की को ऐसे फेंक फेंक के दूसरी तरफ चले जाना, फिर जिस दिन दिल करे दीन को अपना लेना, फिर जिस दिन दिल करे उधर चले जाना, क्योंकि वहां पे अब फायदा मिल रहा है, अब यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, या यहाँ पे तो कोई नुकसान हो रहा है। अब वो औरत भी कहती है कि वहां पे फायदा मिल रहा है, जिस दिन दिल करता है अपने खाविंद के पास आ जाती है, जिस दिन दिल करता है कहीं और चली जाती है। तो ऐसे नहीं हो सकता, एक का बन के रहना होगा। अब वो खाविंद अगर ये डिमांड कर सकता है कि तुझे मेरे साथ रहना है ना, तो सिर्फ मेरी वफादार बन के रहना होगा, तो क्या अल्लाह ताला नहीं डिमांड कर सकता? जिसने हमें पैदा किया है, जिसकी हम मिल्कियत है, मिल्कियत है हम किसी की, हम ऑन आर ओन नहीं है, हम खुद से खुद नहीं आ गए यहाँ पे, कोई हमारा मालिक है, हम उसकी मखलूक हैं, उसने हमें पैदा किया है, उसका हक है कि वो ये कहे कि तुम या तो मुझसे वफादार हो या फिर जाओ, कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा तुमसे, तुम खुशी से दो ना खुशी से दो, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तुम मेरे हो ही नहीं तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? तुम मेरे वफादार होगे, तुम्हारी सब चीज एक्सेप्ट होगी, तुम मेरे ही वफादार नहीं। अब वो बीवी अपने शौहर को लाके तोहफे दे रही है, वो उसके लिए खाने प्यारे प्यारे अच्छे बना रही है, उसके ऊपर अच्छे खूबसूरत बोल बोल रही है, बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रही, वो क्या करेगा इसको? कहेगा तुम मेरी क्या वफादार हो? इसलिए यहाँ पे दीन में ये नहीं चल सकता कि एक दिन इधर के बन गए, ओ एक दिन उधर के बन गए। वो कहते ना वो कव्वा चना हंस की चाल, या कौन तो आधे तीतर आधे बटेर बन के नहीं चला जा सकता दीन पे, कि कभी उधर को हो गए कभी इधर को हो गए, कभी जिस दिन दिल किया ईमान वाले बड़े बन गए, रमजान के रमजान मुसलमान बन गए, उसके अलावा कोई मुसलमानियत नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे दीन, ऐसे नहीं होता। सौदा करना होगा, या तो ये सौदा कर लें जिसमें आज कुर्बानी है और फिर हमेशा का सुख है, या फिर ये सौदा कर लेंगे जिसमें आज तो बड़ा फायदे मिल रहे हैं, दूसरी तरफ जाने में बड़े फायदे मिल रहे हैं, इधर क्या मिल रहा है और फिर हमेशा का नुकसान है। तो एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। मुनाफिक वो थे जो एक तरफ नहीं हो पाए, वो कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, डगमगाते फिरते थे, और जब वो इधर को आई भी तो अब उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि अब कोई फायदा नहीं है तुम्हारा आने में। मतलब अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाह व रसूलुहु, और अगर बेशक वो राजी हो जाएं जो उनको अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया, अगर अगर ये ऐसे होते ना, इतने अच्छे होते, ईमान वाले होते, तो ये कोई बात ही ना कहें, ये तो राजी हो जाएं जो भी अल्लाह रसूल ने, इसलिए क्योंकि एक होते ना सहाबी, सुभान अल्लाह, वो इस्लाम लेकर आए तो उसके बाद जंग में लड़े, और फिर जब माले गनीमत आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया कि उनको ये दें, तो वो जब आए तो आपने उनको वो देना चाहा, तो क्या आगे से फरमाते हैं कि या रसूल, मैं इसलिए तो नहीं मुसलमान हुआ, मैं इसलिए तो नहीं ईमान लेकर आया, यानी कितना उनके अंदर इखलास था, मुझे यानी ये तो नहीं चाहिए, मैं इसलिए तो नहीं लड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके ईमान कैसे थे, और कुछ ये थे कि बस हमें मिले तो फिर ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये उस पे ही राजी हो जाते जो इनको अल्लाह दे और उसका रसूल दे, वकालु हसबुन अल्लाह, और वो कह देते अगर ये, और वो ये कहें बात, यानी हमारे लिए तो अल्लाह काफी है, सयुतीन अल्लाह मिन फदली व रसूलु, अन करीब हमको देगा अल्लाह अपने फजल से और उसका रसूल भी, इन्ना इला अल्लाह ही रागिबून, अपनी नजर अल्लाह की तरफ रखते कि हम अल्लाह की तरफ रगबत करने वाले। पता नहीं अल्लाह ताला उनको कितना देता, अगर वो ये कहते तो तब ये सच्चे मोमिन होते, क्योंकि सच्चे मोमिन की नजर अल्लाह के ऊपर होती, वो ये नहीं कहता इसने मुझे कितना दिया, अच्छा नहीं दिया तो फिर जाओ हम नहीं तुम्हारे साथ अब से। ये तो मुनाफिकीन का रवैया ना, अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र किया है कि ये अगर वो ऐसे हो जाएं, अगर वो ऐसे हों कि वो राजी हो जाएं, क्योंकि ये है ईमान वाले की शान कि वो औरों की चीजों की तरफ नजर नहीं रखता, उनकी जेबों की तरफ नहीं देखता, उनकी तरफ से मिलने वाले मफाद उसको हर वक्त उनके ऊपर नजर नहीं होती, बल्कि उसकी नजर अल्लाह पे होती है, हमारे लिए अल्लाह काफी है, वो देगा ना हमें, वो अपने फजल से हम करीब देगा, उसका रसूल देगा, हम उसकी तरफ ही देखते हैं, हम उसकी तरफ भी रगबत करते हैं। तो नजरें किस की तरफ होनी चाहिए? रब की तरफ। और जो कुछ मिल जाए उससे उस पे राजी रहे, हम राजी हैं जो हमें अल्लाह रसूल ने अता किया। ये राजी रहना ना, ये भी दिल की एक कैफियत है। मुनाफिक राजी नहीं होते थे, और राजी रहना ये मोमिन का शेवा। इसीलिए तो हमें जो सुबह शाम की दुआओं के अल्फाज सिखाए गए, रदी तो बिल्ला ही रब्बन व बिल इस्लामी दिन, तो रदी तो बिल्ला ही रब्बन में क्या है, हम राजी हैं, हम राजी हैं इस्लाम के दीन होने पे, हम राजी हैं अल्लाह के रब होने पे, हम राजी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे। ये रजा बड़ी चीज है, ये नसीब खुशकिस्मतों को होती है कि वो राजी रहे। वो किसी का वाक्य आता है कि वो दुआ मांग रहे थे और दुआ किए जा रहे हैं, इतनी देर हो गई और एक ही बात कहते जा रहे हैं। बड़ी मुझे ये प्यारी बात लगी, एक ही बात कहते जा रहे हैं, अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, अल्लाह हम तुझसे राजी हैं। तो जब उन्होंने दुआ खत्म कर ली, इतनी लंबी दुआ में एक ही फिक्र, तो उनसे पूछा गया कि आप ये क्या कह रहे थे, एक ही बात बार बार कहते जा रहे हैं। कहते हैं मैं ये इसलिए कह रहा था, अल्लाह हम तुझसे राजी, अल्लाह हम तुझसे राजी, कि अगर एक दफा अल्लाह ताला भी कह दे कि जा मेरे बंदे मैं भी तुझसे राजी, तो मेरा तो काम बन गया ना। तो अल्लाह भी उनसे राजी होता है जो उससे राजी होते हैं, और जो हर वक्त उसे नाराजी रहे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसे हो गया, हमें, तो ये तो अल्लाह से नाराजगी है ना, क्योंकि देने वाला तो अल्लाह है। तो हमें देखना चाहिए कि जिंदगी में जो भी आज तक हो चुका, जिन हालात से भी हम गुजर गए, या जो भी आज हमारे साथ है, क्या मैं और आप अल्लाह ताला से राजी हैं या नहीं, या हर वक्त ही हमारे पास शिकायतें ही हैं, हर वक्त ही हमारे पास रोने ही हैं। ए अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, ये क्या हम कह सकते दिल से, जुबानों से नहीं? जुबानों की तो अभी हमने बातें देखी नहीं है ना, ये मुनाफिकीन के तरीके होते थे। खुदा के लिए हम जुबानों से मत कहा करें वो बातें जो नहीं है दिल के अंदर, मत कहा करेंगे कि मैं तो ऐसे होती तो मैं तो ये कर देना था, मैंने वो कर देना था, मैं तो फलान जान देने को तैयार, मत कहा करें ये, क्योंकि ये सच नहीं है। हम नहीं करते, हमसे एक नमाज के लिए उठना मुश्किल हो जाता है, हमसे एक नींद तोड़नी हो फजर के लिए उठना, वो हमारे लिए वो एक मुसीबत बन जाता है, एक रोजा रखना हमारे लिए वो हो जाता है, वो सदका खैरात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम के कहाँ से जाने देने की बातें करते हैं, तो नहीं कहा करेंगे। लेकिन अगर वाकई दिल के अंदर ये बात है ना कि हाँ वाकई हम अल्लाह से राजी हैं, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक अता है कि हम कह दें कि अल्लाह हम तुझसे राजी हैं, और हम उम्मीद रखें कि अल्लाह मैं भी तुझसे राजी रही हूं ना, अल्लाह तू भी मुझसे राजी हो जाना। इर्जी इला रब्बी की राधिया तो मर्दिया, वो जो नफ्से मुतमाइना का है ना, या तो नफ्स मुतमाइना, वो भी अल्लाह से राजी होता था दुनिया में, और अल्लाह भी उससे राजी होगा उस दिन। तो नफ्से मुतमाइना तो राजी बरजा है, अल्लाह तेरी जो रजा मैं उसमें राजी हूँ। हमारे लिए अल्लाह काफी, हसबुनअल्लाह काफी है हमारे लिए अल्लाह। ये कितना बड़ा एक सोच का फर्क है ना, एक सोच वो है जिसमें लोगों की तरफ देखना, क्या मिलेगा इनसे, फना आ रहा है पता नहीं क्या लेकर आएगा हमारे लिए, कुछ लाएगा भी कि नहीं लाएगा, जैसे लाएगा वैसा ही हम उसके साथ सलूक करेंगे। दूसरी तरफ ये कि अल्लाह ने देना है मुझे, जो कुछ मिलना उसकी तरफ से मिलना, जो आज तक भी दिया उसी ने दिया, लोगों की तरफ नहीं देखना।